आइए, तुम्हारे नसीब में मुलाकात लिखी थी नौजवान वकील। मैं तो जावेद यान साहब के नाराज ना होने के लिए दफ्तर आया हूँ। आपके हुलिये से तो साफ वाजे है कि हशमत यान साहब का सफर उतना मुफीद हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। बैठिए।
जी बहुत शुक्रिया।
तो बताया नहीं आपने कि मुझसे और जावेद यान साहब से आपको क्या काम था।
सफीरी साहब, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हशमत यान साहब को फोन पर सिर्फ जावेद यान साहब से ही बात करनी है।
नौजवान, मैंने अर्ज तो किया कि जावेद यान साहब बीमार हैं और कोई फोन भी नहीं उठा रहे। अब अगर आपको उनके घर का फोन नंबर चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कि उन्होंने तमाम कामों को मेरे सपोर्ट किया हुआ है और इस वक्त वो बोर्ड और दुबई वगैरह के मौजू पर बात करने का हौसला भी नहीं रखते।
ओ खैरियत, क्या उनकी तबीयत?
ये मौजू बिल्कुल जाती और घरेलू है
डॉक्टर। ये जाती मौजू जो आपने कहा, क्या ये उनके जानने वालों में से किसी के खो जाने के मुतालिक तो नहीं है?
क्या आपको रामीन की कोई खबर मिली है?
रामीन?
रामीन हो या शाहीन,
क्या वो लोग भी खो गए?
नहीं, खोए तो नहीं है। नौजवान, मैं हशमत यान साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। आप भी मेरा मुंह खुलवाने और दूसरों के जाती मसाइल में दखल अंदाजी करने के बजाय ये बताइए कि आप जावेद यान साहब के घर आने के किस खोए हुए फर्द के बारे में बोल रहे हैं।
एक 21 साल चादर वाली लड़की है जिसे मारने के इरादे से उसे लाके हशमत यान साहब के बाग के कुएं में फेंक दिया था, तकरीबन कोई 8-9 दिन पहले।
हैरत है, मामला तो मुजरिमाना हो गया। जावेद यान साहब के रिश्तेदारों में चादर वाली लड़की तो, अरे कहीं वो, तुमने कहा उसे कुएं में फेंक दिया गया है, कौन है वो?
पता नहीं, अपना हाफजा भी खो बैठी है और अब खुद भी खो चुकी है, मगर इतना जरूर पता है वो किसी रामीन को भी जानती थी और कोई जलील और कोई खलील भी। उसका नाम दीना है, दीना सहाब ज़ादा, जावेदियान साहब के भाई की पोती। जी हाँ, ये बताइए कि आपने उनके घर का ये नंबर लिखा है कि नहीं?
अल्हम्दुलिल्लाह, खूब सब कुछ लिख लिया, मगर देखो जवादी, जावेदियान की दामाद की बातें एक बार फिर से दोहराना जरा। हाँ रुको रुको रुको, अब बोलो।
उसका नाम दीना है, दीना सहाब ज़ादा, जावेदियान साहब के भाई की पोती।
ये बताओ कि फिर उसका खानदानी नाम भी जावेदियान क्यों नहीं है? क्या अनबन है इन दोनों घरानों में?
नहीं जनाब, खुद जावेदियान साहब का भी असल खानदानी नाम साहबजादा है। बज़ाहिर ये लड़की बमबारी में अपने माँ बाप को गंवा चुकी है, एक छोटे शहर की यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है, अपने दादा को देखने के लिए बाज़ औक़ात तेहरान आ जाती है, मगर सारा किस्सा ये नहीं है।
बोलो बोलो, सब कुछ बोल दो जो कुछ समझे हो।
जैसा कि उस आदमी की जबान से गलती से निकल गया, इस अरसे में जावेदियान साहब के दो बेटे भी खो गए। पहले तो वो समझ रहा था उनके रामीन और शाहीन की खबर लाया हूँ, बाद में जब मैं उसे ये कह रहा था कि जावेदियान साहब के घर का पता दो मुझे, तो कहने लगा वो बीमार हैं और घर में बैठ गए हैं, और मौलाना साहब ज़ादा को भी वो खुद ही बता देगा।
समझ रहे हैं कि इन्हें और इनके वकील को कोई खजाना मिल गया है।
शाबाश जवादी, हमारी चाल कामयाब हो गई।
क्यों मौलाना साहब?
मोहतरमा, ये आखिरी के मौलाना, मौलाना और बिन माँ बाप की। लड़की के अल्फाज सुनकर बुरी तरह से तहो बाला हो गई।
जनाब कौन तहो बाला हो गया? लगता है कि आप भी अपनी उस बेजमीर बेगम से कुछ कम नहीं है। आखिर कौन सी चाल? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मामला इससे कहीं ज्यादा टेढ़ा है कि एक लड़की को नेस्त नाबूद करना चाहें।
बोलो, मेरे मरहूम बाप की कसम।
मेरी माँ की जान की कसम, मेरे मरहूम बाप की कसम।
खूब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करो कि किसी को अब तक उस लड़की का जनाजा नहीं मिला है। देखो, मैंने अपने आप को तुम्हें ये जुमला बोलने से बहुत रोके रखा, लेकिन अब जबकि मैं जान गया हूं कि ये लड़की बिन माँ बाप की यतीमा है, तो अब कह देता हूं, अगर इसके सर पर कोई आफत आ गई हो, अगर इसका कुछ बुरा हुआ, तो या मैं इस घर में रहूंगा या तुम और तुम्हारी इस नौकरानी को रहने दूंगा। मेरे बाप की तुर्बत की कसम, मेरी माँ की रूह की कसम, मेरे बेटे और मेरे बच्चों की जान की कसम, ये जहन नशीन कर लो।
फोन आया है महमूद।
कौन है?
मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं।
उससे कहो भी उससे बात नहीं करता जिसे मैं जानता ही नहीं।
हेलो, माफ कीजिएगा महमूद साहब, मतलब ये कि वो अभी मसरूफ हैं। उन्होंने कहा है कि आपसे पूछूं क्या काम है आपको उनसे।
मेरी तरफ से उसे बस इतना कह दीजिएगा कि मोहतरमा, ईद होने से पहले अपनी और जावेदियान साहब की फिक्र कर लें।
किस लिए?
इसलिए कि हो सकता है कि उनका भेद खुल जाए कि उसने अपने बाबा के कुरान को चुराने के खातिर अपनी भतीजी को किसी के बाग के कुएं में फेंक दिया है। अब जाओ अपनी जवानी ले लो जावेदियान से।
कौन था अकरम? अकरम, अकरम,
मैं तुमसे कहता हूँ कौन था?
मेरे करीब मत आना।
अकरम, मुझे सिर्फ इतना बताओ कौन था।
मत आना मेरे करीब, मत आना। दीना को तुमने मारा है, तुमने मारा है दीना को।
बकवास मत करो, आखिर मैं क्यों मारूंगा उसे?
मैं जानती हूँ तुमने ही दीना को कत्ल करके कुएं में फेंक दिया है और तुम अपने बाप के कुरान को चुराना चाहते थे।
बकवास मत करो, मार मार के तुम्हारा हशर कर दूंगा।
ये क्या हो रहा है?
एक साहब ने ताया के घर से फोन करके इसे कहा कि मतलब कुछ उल्टी सीधी बातें मेरे मुतालिक बोली और इस अहमक ने भी मान लिया है।
मैं अहमक नहीं हूँ हाजी साहब, मैं अहमक नहीं हूँ हाजी साहब।
तुम इससे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई काम वाम नहीं है? जाओ अपने काम पे।
मुझे आज कोई काम नहीं है। आप खुद क्यों घर पर रुके हुए हैं, बला के खौफ से?
भला तो तुम हो।
जी हाँ, बिल आखिर कोई भला नहीं आनी थी, तो एक बंदे का नाम भला रख दो ताकि इस बात को टाला जा सके। अकरम साहबा, तुमने सुना बाबा जान क्या कह रहे हैं?
भला मैं हूं, वो भी पर्दे उठाने वाली भला।
खुदा हाफिज बाबा जान।
मुझे आज बहुत नमाजें पढ़नी है, अपना ख्याल रखना। अगर डर लग रहा है तो आकर मेरे कमरे में बैठ जाओ।
हाँ जी।
तुम्हारा ध्यान घर के दरवाजे की घंटी पर है। मैं दीना का इंतजार कर रहा हूं।
दीना?
जी जनाब, मैं अभी वहां पहुंचा हूं जहां आपकी बेगम ने उसे उतारा था। मेरे अजीज, यहां तो कोई नफसियाती डॉक्टर है ही नहीं। बिल्कुल, होल्ड करें, होल्ड करें। अरे जनाब, क्या आप बता सकते हैं यहां पे थाना कहां है?
थाना, थाना, तीन गली के बाद दाएं जानिब जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा।
अपने बच्चों को एहतियातन स्कूल नहीं भेजा, इतना याद रहे कि ईद का चांद होते ही खुदा हाफिजी के लिए एक उन्हें मेरे पास मत भेजना।
जीना, अफशीन, आओ आओ जल्दी।
माफ कीजिएगा, ये तहकीकात के ऑफिसर का कमरा कहाँ है?
हाँ उस तरफ।
शुक्रिया।
कौन है? मैंने पूछा कौन है?
कौन है अकरम? क्या मेरे लिए आया है कोई?
अकरम, कौन है?
कोई नहीं, आगा साहब मुझसे मिलने आए हैं।
جب اس قرآن کا واقعہ اور میرے دادا جان اور میری تائی کا شفا پانا مجھے یاد آ گیا تب میں سمجھی کہ میں اس کنویں میں کیوں گری اور کیوں میرا راستہ حشمتیان کے گھر کے سم کھل گیا۔ باوجود اس کے کہ میں اس بلا اور عذاب کے حوالے سے فکر مند تھی جس کے بارے میں دادا جان نے رامین سے بات کی تھی، باوجود اس کے میرا دل بے چین تھا کہ انہیں ایک نظر دیکھ لوں یا ان کی آواز سن لوں۔ صبر کرنا تھا تاکہ حشمتیان کی طرف سے کوئی میری خبر لینے آئے، اس کی وجہ تو اب تک نہیں جانتی، میں جانتی ہوں کہ بچکانا بات ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ خود چچا سامک میری کھوج میں آئیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ میں اب تک صبر کیوں کر رہی تھی۔
ساتھ موٹی اور سوکھی گائیں اور بلا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ جو شخص اس عذاب الہی کو روک سکتا ہے وہ تم ہی ہو؟
یہ عذاب اگر اب تک میرے تایا اور ان کے ساتھیوں پر نہیں بھی آیا ہو تب بھی اس کا حشمتیان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اگر جاویدیان کی داڑھی حشمتیان کی مٹھی میں ہو تو آؤ چلیں، حشمتیان اگر خود بھی یہاں ہوتا تو اس کی داڑھی اور اپنی مٹھی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا۔ چلو۔
ارے ارے ذرا ٹھہرو، ادھر ہم بھی کچھ ہیں، ابھی تک تم لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دی میں نے۔
آفیسر صاحب، میں نے یہاں اپنے باپ کی گھر، سند، پتہ، فون نمبر وغیرہ سب کچھ رکھوائے ہیں۔
میں اگر حشمتیان کی بیوی کو بھی یہاں نظر انداز کر دوں تب بھی اسے ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتا جس کا نام بھی یہ محترمہ نے ابھی تک نہیں لیا ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی نے یا بھائیوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا تھا، ہے نا؟
میرا کوئی بھائی نہیں ہے آفیسر صاحب۔
یہ اپنے فرض کے مطابق اس کا نام زبان پر نہیں لانا چاہتی جس نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا۔ قرآن تو پڑھتے ہیں نا آپ۔
میرے سامنے وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جتنے بھی قصے مجھے سنائے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر محترم ہوں گے، مگر ہم ابھی ایک ایسے وقت اور ایسے شہر میں ہیں جہاں کچھ قانون ہوتے ہیں۔ اگر تم یہاں سے باہر قدم رکھو اور تمہارے ساتھ پھر کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟
قرآن کی آیت صرف احترام سے رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے آفیسر صاحب، حادثہ صرف اسی وقت ہوگا جب آپ مجھ سے اس وقت نہ جانے دیں جب مجھے جانا چاہیے۔
آؤ
کپتان صاحب، بالآخر میں نے مرکز سے رابطہ کر ہی لیا، کوئی صاحب ہے جواد جوادی کے نام سے جو اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کروں، معلومات کروں کیا؟
وہ یہی ہے۔
یہ داڑھی کا معاملہ کیا ہے؟
تم نہ جانو تو ہی اچھا ہے، بس کوشش کرو کہ اس کی بیوی نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے بس انہیں کسی طرح قائل کر دو کہ جاویدیان کو اس کی اوقات دکھا دے۔
کیا تم پہلے مجھے اپنا موبائل دے سکتے ہو؟ پہلے مجھے کچھ باتوں کی تسلی کرنی ہوگی۔
میں نے تمہیں اندر نہیں بتایا، رامین اور اس کا بھائی اپنے گھر سے جا چکے ہیں اور تمہارے چچا بھی خانہ نشین ہو گئے ہیں۔ ویسے یہ دونوں بھائی تم کو کنویں میں پھینکنے سے کوئی تعلق تو نہیں رکھتے نا، یا رکھتے ہیں؟
مجھے میرے چچا نے ہی مار پیٹ کے پھینکا تھا، اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم۔
حاجی 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 دینا، حاجی صاحب، مولا عباس کی قسم خود دینا ہے حاجی۔
کہیں تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟
نہیں، بخدا وہ خود ہے، اکرم جان کہنے کا اس کا مخصوص انداز اور لہجہ تھا۔
سلام میری جان۔
سلام دادا جان۔ میرے دادا جان،
خدایا تو میری طرح تمام لوگوں کی آنکھوں کو روشن کرے، کہاں ہو میری آنکھوں کا نور، کہاں ہو میری عقل کل بچی؟
میں ٹھیک ہوں، آپ کی ہندہ جگر خورا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ کسی کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میرے منہ میں خاک ہو۔ رامین اور شاہین کے جانے کا معاملہ کیا ہے؟
تم تو اپنی عقل کھو بیٹھی تھی، میرے لیے عذاب کیوں بن گئے تم؟
جلیل آسمانی والا کے نازل ہونے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، باقی سب مسجد چلے جائیں گے، دینا یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، جلدی گھر پہنچو، تمہارا آزاد ہونا مطلب بلا کا نزول ہونے والا ہے۔
میں ابھی تو جیل سے آزاد ہوئی ہوں۔ میں ہی، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا جو میرے خیال سے خلیل تائے کو ان کے اوقات دکھا کے سیدھا کر سکتا ہے۔
یہ کوشش رامین نے بھی کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہے، جلدی سے تم بس گھر لوٹاؤ میری بچی۔ غروب آفتاب میں وقت بہت کم ہے۔
آپ پریشان مت ہوں دادا جان، میں بس بہت جلد گھر آنے والی ہوں۔
تا दीना।
जी दादा जान।
मैं सिर्फ दीना जल्दी घर पहुंचो।
मेरे लिए फिक्रमंद ना हूं, मैं एक ऐसे आदमी के साथ हूं जो काबिले इत्मीनान है। बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है?
हाजी महमूद चला गया, उसने जैसे ही दीना का नाम सुना फौरन चला गया।
कोई जरूरत नहीं है, जेल में इसे खुद ही सब कुछ याद आ गया है।
हंगामा आंटी, सलाम।
वास्सलाम।
चचा श्यामे कहाँ है?
नीचे है।
शुक्रिया।
तुम उसे लेके यहाँ आओ ताकि मैं।
चचा वो सहन में है। सलाम। एक मिनट के लिए फोन काटी, मुझे आपसे फौरन बात करनी है।
बात सुनो, क्या तुम जेल जाने का बदला लेने आई हो मुझसे?
चचा श्याम, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे हक में बहुत कुछ किया है। आप मेरी बात खत्म होने तक कुछ भी ना कहें। खुदारा मेरे पास वक्त बहुत कम है।
एक मिनट रुको, क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ और देर से आऊंगा?
मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है।
ईद हो गई है, तुम क्या करना चाह रहे हो?
कुछ नहीं, अभी तो काफी वक्त है ईद में, और मस्जिद तो सब जगह एक ही होती है। मैं वही अम्मी के मोहल्ले की मस्जिद में चला जाऊंगा जहाँ बचपन में जाया करता था।
बहुत बेशर्म हो तुम, ये इसलिए कर रहे हो कि बाबा ये ना समझे कि तुम उन्हें धोखा दे रहे हो।
फरीदा, मेरी माँ बीमार है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? डर रही हो तो बोल दो कि डर रही हो। अपने बच्चों को तैयार कर दो, मैं साथ ले जाता हूँ।
मुझे तो मालूम है कि तुम अभी मोहल्ले की मस्जिद जा रहे हो, खुदा करे कि तुम कभी पहुँच ही ना सको।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस घर से जाकर फिर कभी वापस ना आऊंगा यहाँ पे।
चचा श्याम है, सूरज डूब रहा है, खुदा के लिए कुछ बोलिए।
ये पागल क्या बोल रही है वकील?
वो आपसे ये चाहती है कि ईद होने से पहले उठिए और उसके दादा के भाई के पास जाके उसे धमकी दें, नसीहत करें कि लोगों के पैसे वापस कर दें, मगर ऐसे कि वो समझ ना पाए।
तुम जो कुछ बोल रहे हो वो मैं जानता हूँ, बस कुरान और इसके दादा का किस्सा तुमसे पूछ रहा हूँ मौलाना साहब।
हाजी साहब, मैं भी रुकी हुई हूँ, जब दीना आ जाएगी तो साथ मिलकर जाएंगे।
तुम जूते पहन लो, मैं चाहता हूं कि अजान से पहले तुम मस्जिद में रहो। अगर तुम्हारे पीछे दीना या कोई और ना आए तो वहीं रुक जा।
और अगर अभी चंद घंटों तक ना दीना आई और ना ही ईद हुई? मुझे रुकने दीजिए, हम साथ चलते हैं। हाजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, उस अलमारी पर रखे हुए कुरान के हवाले से, महमूद की उन हरकतों के हवाले से जो उसने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए की।
अकरम, मैं कह रहा हूं ना कि तुम घर की बरकत हो, जाओ।
तो फिर तुम भी ज्यादा मत रुकना, ठीक है? अगर अजान हो गई और दीना की कोई खबर ना मिली तो तुम भी आ जाना।
अरे बाबा, फिर वही बला बला कर रही है। खोल के कह दो कि अगर मैं भी तुम्हारे इस हिज्जान को ना सुनूं और इस पर अमल ना करूं तो इस बार मैं और मेरे बीवी बच्चे भी बला की जद में आ जाएंगे।
मैंने ये नहीं कहा कि आपका खानदान इसकी जद में आएगा।
इत्तेफाक से मामला बिल्कुल उलट है। अगर आप संजीदा ना लें और इससे कहें कि अपने इस हिज्जान को साबित करके दिखाया और उसके बाद भी आप बैठे रहें और कुछ ना करें तो इसकी जद में जरूर आ जाएंगे आप।
सच कह रहे हो, ठीक है, ये लो। ठीक है, अब किसी के काम से काम नहीं है मुझे।
बिल्कुल वही काम जो मैंने किया।
अब तुम ये क्या कह रहे हो?
देखो, ये एक सच्चाई है, यकीनन आपकी बातें खुदा के कुरान से कोई ताल्लुक नहीं रखती, सिवाय इसके कि हमारे दरमियान हंगामा साहिबा आपकी बातों पर संजीदा हो जाएं और हमसे ये कह दें कि आपकी बातें खुदा के कुरान से मुताल्लिक हैं।
मैं? मुझे कैसे पता? खामा खा की बातें कर रहे हो तुम लोग।
हंगामा साहिबा, आपको मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं सिर्फ उस बला को रोकना चाहती हूँ। इनको बताइए ताकि आपने मेरे लिए मेहमान बुलवाए थे, इन्हें बताएं ताकि सब कैसे हैरान और परेशान रह गए थे, बताइए ताकि कपड़े के मसले पर हम दोनों का झगड़ा था।
ठीक है, ये सब भी बता दे। फिर क्या तुम चाहती हो कि कपड़े की बहस से और एक बेतुकी सी दावत का बता के बावर कराना चाहती हो कि तुम्हारे दादा जान ने एक फालिस जदा को शिफा दी है और वो बदबख्त खड़ूस और अक्कड़ खान जावेद यान एक फिरौन है और मैं ईद होने से पहले पहले आसमानी पत्थरों की रोकथाम कर दूं।
चाचा जान, वाकईतन ये निशानी भी मुझे मिल गई जो मेरे दादा जान ने मुझे कहा था कि मेरा यहाँ आना बेकार है। उन्होंने कहा था कि गुरु बे आफ्ताब से पहले घर आ जाऊं।
दीना रुको, दुबई में एक इमारत खड़ी करना इतना अहम नहीं जितना एक ऐसे हम पेशा आदमी की फिक्र करना जो लोगों का माल हड़प जाता है। आप खुद बखूबी जानते हैं कि अगर इसकी तमाम तर बातें भी गलत निकली तब भी जावेदियान के माल हड़पने वाली बात गलत नहीं हो सकती।
मैं सब जानता हूं कि तुमने उसको कुछ बातें सिखाई हैं।
दीना, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा।
जल्दी करो।
अम्मी खुदा के लिए जल्दी करें, आप तैयार हैं ना?
मैं तैयार हूँ, चलें।
चलें।
श्यामे, श्यामे, रेडियो पे कहाँ जा रहे हैं?
मैं देख रहा हूँ कि रेडियो का भाई क्या कह रहा है। बेहतर है अपने बेटे को समझाओ कि वो आए और मुझे आह लगने से डराए, क्योंकि मैं इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ।